नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से अंगदान के लिए शपथ लेने का किया आग्रह। आयुष्मान भव अभियान के तहत 50,000 से अधिक लोगों ने अंगदान का लिया संकल्प। कोयला कर्मियों के सितंबर के वेतन पर अगले आदेश तक लगी रोक। बीसीसीएल और ईसीएल के कर्मी भी प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। मैथन और पंचेत डैम का बढ़ा जल स्तर, खोले गए गेट, कोयला उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित। और झारखंड वुशु प्रतियोगिता में रांची की टीम बनी चैंपियन, रामगढ़ बना उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक विजय घाट जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजन और रामधुन प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि आज यह प्रण लेने का दिन है कि किस प्रकार हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्श, मार्गदर्शन तथा उनके संदेश स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच तथा स्वच्छ समाज की परिकल्पना को साकार करें। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के दौरान जिला व्यवहार न्यायालय सरायकेला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। इस अभियान में व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी और न्यायालय कर्मी शामिल रहे। इस दौरान नगर के विभिन्न मोहल्ले में साफ सफाई की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से अंगदान के लिए शपथ लेने का आग्रह किया। आयुष्मान भव अभियान के तहत 50,000 से अधिक लोगों ने अपने अंगदान करने का संकल्प लिया है। इस अभियान की शुरुआत पिछले महीने गांधीनगर गुजरात से की गई थी। कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों को सितंबर माह के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में कंपनी के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने पत्र जारी किया है। इस आदेश से धनबाद में कार्यरत बीसीसीएल के 35,258 कर्मी समेत कोल इंडिया के करीब 2.5 लाख अधिकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे। जेबीसीसीआई के 11वें वेतन समझौते के बाद उत्पन्न हुई वेतन विसंगति को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तब तक कोल इंडिया प्रबंधन ने वेतन भुगतान को होल्ड पर रख दिया है। मुख्यालय के अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी से जुड़कर दुमका जिले की महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
दुमका जिले की महिलाएं झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाएं ग्राम स्तर पर समूह बनाकर स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें बेच रही हैं। इस काम में पलाशमार्ट अहम भूमिका निभा रहा है और वैसी महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ रहा है जो घर के कामकाज तक ही सीमित थीं। ऐसी ही महिलाओं के कुछ समूह इन दिनों जिले के जरमुंडी प्रखंड में गंगा जल की पैकेजिंग कर रहे हैं और पलाश मार्ट के जरिए बाबा बासुकीनाथ धाम में उन्हें बेच रहे हैं। यह कारोबार इतना कामयाब रहा कि आज गांव में रहने वाली महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही हैं। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लगातार बारिश के कारण BCCL, ECL और CCL के कोयला उत्पादन पर काफी असर पड़ा है। BCCL में करीब 25,000 टन कम कोयला उत्पादन हुआ। सबसे खराब स्थिति ECL की रही, जबकि CCL में 10,000 टन कम कोयला उत्पादन हुआ। BCCL में लोधना में बारिश के कारण कोयला उत्पादन पर असर देखा गया। फिलहाल नदी जोरिया के किनारे की खदानों की स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है। रोटेशन के आधार पर टीम बनाकर पानी के लेवल की जांच की जा रही है, ताकि खदानों में पानी का प्रवेश न हो। खुली खदानों में पानी भरने की स्थिति में अतिरिक्त मोटर पंप लगाने का आदेश मुख्यालय से एरिया प्रबंधन को दिया गया है। पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण धनबाद के मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है। इसे देखते हुए कल शाम मैथन डैम का एक गेट और गैलरी खोल दी गई है। बढ़ते इनफ्लो के कारण DVRCC ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए पंचेत डैम से 30,000 क्यूसेक और मैथन से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश जारी किया है। DVC के कार्यकारी निदेशक अंजनी दुबे के अनुसार तेनुघाट से पानी छोड़ने के कारण डैम का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए आउटफ्लो भी बढ़ाया जा सकता है। इधर गेट खोले जाने के बाद केंद्रीय जल आयोग ने मैथन और पंचेत डैम के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क कर दिया है। आयोग और DVC MRO की टीम डैम के जलस्तर पर नजर रख रही है। चक्रवात के कारण धनबाद में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे जहां खेत खलिहानों में पानी जमा हो गया है, वहीं दामोदर नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर पर मार्डा लगातार निगरानी रखे हुए है। मार्डा के जामाडोबा जल संयंत्र की ओर से झरिया, धनबाद, पुटकी, लोयाबाद, करकेंद, केंदुआ समेत अन्य इलाकों में जलापूर्ति की जाती है। ऐसे में नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि मोटर पंपों को डूबने से बचाया जा सके। लोहरदगा जिले की 7 छात्राएं एकलव्य विद्यालयों के चतुर्थ राष्ट्रीय सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कला उत्सव 2023-24 प्रतियोगिता में भाग लेंगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कुजरा लोहरदगा की छात्राएं विद्यालय की प्राचार्य अमृता मिश्रा के साथ देहरादून के लिए रवाना हो गई। यह प्रतियोगिता कल से 6 अक्टूबर तक आयोजित होगी, जिसमें देश भर के एकलव्य विद्यालय के प्रतिभागी, जिन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वे भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का निरीक्षण किया। आगामी एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेडियम की व्यवस्था से जुड़ी कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में बिछाई गई आधुनिक ब्लू टर्फ का निरीक्षण किया। रांची की मेजबानी में 27 अक्टूबर से एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। राज्य स्तरीय SGF खेलो झारखंड वुशु प्रतियोगिता में रांची की टीम चैंपियन बनी। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें रांची ने 19 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया। रामगढ़ की टीम 10 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ उपविजेता रही। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग ने बताया कि विजेताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद खिलाड़ी जनवरी में रांची में होने वाली राष्ट्रीय स्कूली वुशु प्रतियोगिता में राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से अंगदान के लिए शपथ लेने का किया आग्रह। आयुष्मान भव अभियान के तहत 50,000 से अधिक लोगों ने अंगदान का लिया संकल्प। कोयला कर्मियों के सितंबर के वेतन पर अगले आदेश तक लगी रोक। BCCL और ECL के कर्मी भी प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। मैथन और पंचेत डैम का बढ़ा जल स्तर, खोले गए गेट, कोयला उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित। और झारखंड वुशु प्रतियोगिता में रांची की टीम बनी चैंपियन, रामगढ़ बना उपविजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।